ओ मैं ज्ञान अति विरांदे श्री ज्ञान जन श्रा क्या चक्षुर मृतम ये तस्म श्री गुरु वेद श्री चैतन्य मनोभिष्ट स्थापित ये भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वतांतिक श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत गदाधर श्रीवास हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे तो अभी तक हमारी जो चर्चा हुई थी उसमें हमने सीखा कि किस तरह से अर्जुन के कई सारे प्रश्न थे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, जिसमें हमने पहले चैप्टर में जो चर्चा की थी उसके आधार से अर्जुन के जो नहीं लड़ने के आर्गुमेंट्स हैं उसके पीछे पांच कारण आचार्यों ने हमें अलग करके दिए हैं। और जैसे पिछली बार चर्चा हुआ था कि अर्जुन की जितनी भी आर्गुमेंट है, जितने भी तर्क प्रस्तुत किए हैं अर्जुन ने और जितने भी समझदारी का प्रदर्शन किया है, वो किसी भी सज्जन व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है। कोई भी सज्जन व्यक्ति ये सोच सकता है कि नहीं, अर्जुन बड़ा अच्छा आदमी है, अर्जुन ने जो भी कहा है सब कुछ बहुत सही कहा है और अर्जुन के जितने भी तर्क है वो बिल्कुल उचित है। लेकिन जब अर्जुन ने अंत में ये कह दिया कि मैं कंफ्यूज हूं, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको ठंड नहीं लग रहा है ना प्रभु? ओके सो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मैं नहीं जानता, ये एक्चुअली अर्जुन का बहुत ही अच्छा गुण है जिसकी चर्चा हमने पिछली बार की थी कि आध्यात्मिक गुरु के समक्ष इस भाव से जाना चाहिए कि क्या उचित है और क्या उचित नहीं है ये आप बताइए, ये नहीं कि उचित भी मैं बताऊंगा अनुचित भी मैं बताऊंगा, आप केवल सिग्नेचर करके दे दो, अप्रूवल करके दे दो कि हाँ तुम जो करो सब कुछ सही है, तो ये जो भाव है वो गलत है। गुरु का काम होता है सुधार करना, तो शिष्य अगर गलती करेगा तो गुरु को रोकना भी पड़ेगा। जैसे अर्जुन गलती किया तो भगवान ने उसको मूर्ख बोल दिया कि तुम मूर्ख नंबर एक हो, बात बड़ी बड़ी करते हो, बहुत विद्वान हो ऐसे, लेकिन तुम जानते नहीं कि जो जीवित जीवित होते हैं जो मृतक होते हैं उसके लिए पंडित जो होते हैं या बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो शोक नहीं करते, अर्थात तुम बुद्धिमान नहीं हो। तो सब भक्तों को ये गंभीरता से लेना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु के समक्ष इस प्रकार की विनम्रता हमारी होनी चाहिए। हमने उस समय आपको एक बात बताई थी कि आप गुरु के सामने जाते हो, आप कितने भी विद्वान हो आप मूर्ख रहोगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है फिर भी अपने गुरु के सामने एक मूर्ख की भांति उपस्थित हुए थे। तो हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, डॉक्टर है, या फिर हम कोई बहुत वरिष्ठ सीनियर सिटीजन है, या फिर आप कोई राजनेता है या कोई फिल्म स्टार है या स्पोर्ट्स स्टार है, लेकिन आज जब गुरु के सामने जाते हो तो आप मूर्ख ही रहोगे, इससे कुछ अंतर नहीं रहता। जैसे एक फिल्म एक्ट्रेस है अपने बॉलीवुड की, वो हमेशा प्रयास करती है कि उसको हरिनाम दीक्षा प्राप्त हो जाए, निरंतर कहती रहती है कि मुझे हरिनाम दीक्षा दे दो, हरिनाम दीक्षा दे दो। जो मथुरा की जो लीडर है, हाँ, वो हमेशा कहते कि मुझे हरिनाम दीक्षा दे दो, हरिनाम दीक्षा दे दो, लेकिन वो तो मूर्खी रहेगी, गुरु के सामने जाएगी तो मूर्खी रहेगी। करती है आठ माला, शायद करती है आठ माला दस माला कुछ करती है रोज, बीच में 16 भी किया था शुरू, और लेकिन 8-10 माले पर अटक गए शायद, और 4 नियम के पालन में अधिकतर करते हैं लेकिन कुछ कुछ चीजें नहीं कर पा रहे। तो कितना भी बड़ा कोई स्टार होता है लेकिन गुरु के सामने तो मूर्ख ही रहेगा ना। कितना भी बड़ा, जैसे भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे और बहुत ही बुद्धिमान थे। वो जब प्रभुपाद को मिले थे तो प्रभुपाद ने उनको मूर्ख प्रूव करके दिखाया था कि तुम मूर्ख हो। वार्तालाप जो किया आप पढ़ सकते हो, वो बुक है हमारे पास जिसमें भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज और प्रभुपाद के बीच में वार्तालाप है। तो वो उस ग्रंथ में आप देखेंगे प्रभुपाद ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं भौतिक वैज्ञानिकों को। प्रभुपाद ने यहां तक कह दिया कि अगर मैं तुम्हें दुनिया भर के सारे केमिकल्स ला के दूं, तुम किसी मृतक व्यक्ति में जान ला के दिखाओ। तो एक बार आई बिलीव साउथ इंडिया या श्रीलंका कहीं पर एक बहुत बड़ा वैज्ञानिकों का सम्मेलन था। पूरे विश्व सारी दुनिया से अलग अलग वैज्ञानिक आए थे, बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध। और इसमें हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रभुपाद जी के डिसाइपल, वो भी एज ए साइंटिस्ट वहां पर गए थे। और उन्होंने एक चैलेंज सबको दिया था कि अगर आप ऐसा मानते हो कि लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, देन आई ब्रिंग ऑल द केमिकल्स। मैं आपको सब प्रकार से जो आप डिमांड करो मैं सब प्रकार के केमिकल्स आपको ला कर देता हूँ और आप जीवन ला कर दिखाओ, मृतक शरीर को आप जिंदा करके दिखाओ। एंड एवरीवन एक्सेप्टेड दैट डिफीट। सब लोगों ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, ये संभव नहीं है। सो गुरु के सामने हम हमेशा मूर्ख होने चाहिए और गुरु के पास कभी भी आप जाओ तो गुरु को पूछो प्रश्न। गुरु को बताने की आवश्यकता नहीं है सब। क्या आप जानते हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या गुरु जानते हो उससे फर्क पड़ता है। इसलिए आप जब भी जाओ तो अगर आपको किसी विषय में बात करनी है उनसे तो आप अपने निर्णय मत सुनाया करें। आप उनसे निर्णय कैसे लेना वो सीखे कि किस प्रकार के निर्णय मुझे लेने चाहिए, कौन से निर्णय मेरे हित में है। अर्जुन ने यही तो कहा ना कि कौन सा निर्णय मेरे हित में है, युद्ध करना हित में है या युद्ध नहीं करना हित में है, वो आप मुझे निश्चित रूप से बताइए, है ना। यश श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन ने, आप मुझे निश्चित रूप से बताइए। तब फिर भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान बताना शुरू किया। भगवद गीता में जो आत्मा का ज्ञान बताया गया है विशेष करके चैप्टर 2 में, इसके अलावा इसके अतिरिक्त भगवदगीता पूरी समग्र भगवदगीता में शरीर और आत्मा का ज्ञान इस तरह से कभी नहीं बताया भगवान ने। इज ओनली वंस, नॉट रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इसका एक कारण यह है क्योंकि ये इतना प्राथमिक ज्ञान है, इतना बेसिक ज्ञान है कि ये ऐसा एज्यूम किया जाता है कि सबको आना चाहिए। और हमारी दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि हमारे स्कूल कॉलेज में से पूरी एजुकेशन सिस्टम में से निकाल दिया है ही नहीं। शरीर और आत्मा का ज्ञान का कोई है ही नहीं, चैप्टर ही नहीं। आज चाहे कोई बढ़िया एक्सपर्ट में चले, ऑक्सफोर्ड में चले जाओ या आप कौन सी बहुत बड़ी बड़ी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आप चले जाओ, कहीं पर भी एक भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें आत्मा के विषय में ज्ञान दिया जाता हो। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए हमें भगवद गीता का विशेष रूप से प्रचार भी करना चाहिए और अध्ययन भी करना चाहिए। अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम इस तत्व ज्ञान को अभी तक इतनी उम्र बीत जाने तक समझ नहीं पाए थे। वास्तव में बचपन से हमें आना चाहिए था, जैसे आप गुरुकुल में पढ़ाते बच्चों को, तो गुरुकुल के बच्चों को यह ज्ञान होना चाहिए कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तभी से आप कैसे भी करके आपके मॉड्यूल में इसको शामिल करना चाहिए कुछ लेवल के पश्चात, अगर 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, उस तब उनको ये इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। उसके लिए एग्जाम्पल्स बताओ, भगवद गीता का आप यूज करो, व्हाट एवर यू वांट टू, द वे यू वांट टू टीच. बट द आइडिया इज कि बचपन से ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए. अगर आप सोचिए कि हमारे विद्यार्थी स्कूल कॉलेज के यूनिवर्सिटीज के अगर बचपन से ये शरीर आत्मा के विषय में जानते होते तो आज ये समाज की स्थिति बिल्कुल अलग होती है ना. जो सरकार की सबसे बड़ी समस्या है जो भ्रष्टाचार, वो समाप्त होने में दिक्कत नहीं होती, हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता. आज लोग कितने लोभी हो गए हैं क्योंकि अज्ञान वश है. अभी लोभ का उपचार नहीं है, कितने भी लोग पाला उस पर भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे. आपको लगेगा कि अहमदाबाद में सब ट्रैफिक के कारण वो जो भी था वो सब सेट कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि ये स्थिति हमेशा बनी रहेगी? समाज में परिवर्तन इतना आसानी से आ सकता है? आए तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक लोगों की अज्ञानता आप सप्रेस करोगे, आप तो केवल दबा रहे हो उसको. अगर आप अज्ञानता सप्रेस करोगे तो कभी ना कभी बाहर आने ही वाला है. आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा. जब तक आपने मूल से उपचार नहीं किया है, जड़ से उसको उठाया नहीं है, तब तक वो कहां से ठीक होगा? और ये सब समस्याओं का मूल कारण है आत्मा का ज्ञान नहीं है. लोग जानते नहीं कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है. लेकिन जो धीर पुरुष है वो जानता है. भगवान ने जब आत्मा के विषय में बात करना शुरू किया था उसमें भगवान ने कहा था कि ऐसा कोई समय है ही नहीं जब मैं नहीं था ना तुम थे, भविष्य में ऐसा कोई समय आएगा नहीं कि जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा. तब हमने आपको बताया था कि इसमें मायावादी तत्वज्ञान को प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से खंडन किया है. आप अपने होमवर्क में इस चीज को लेके गए थे कि प्रभुपाद के तात्पर्य में मायावादी जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको एक पेपर पे या कहीं पर भी उसको मार्किंग किया जाए कि मायावादी तत्वज्ञान प्रभुपाद किस तरह से इसको खंडित करते हैं. तो जनरली जब मायावाद की हम बात करते हैं तो बेस्ट तरीका यह है कि मायावादी जो आर्ग्यूमेंट होती है उसको समझ करके उसका खंडन किया जाए. मायावादी आर्ग्यूमेंट करते हैं, अगर मायावादी तर्क है कि आत्मा और शरीर भगवान का अलग अलग है तो एक तर्क हुआ, ये उनका एक स्टेटमेंट हुआ. फिर हमने आपको उदाहरण दिया था घटाकाश पटाकाश वाला, आप याद है ना, मटका वाला एग्जांपल. तो वो मटके और चंद्रमा, आकाश के चंद्रमा से इकट्ठा हो गया, मिल गया. अभी ये तर्क जो है वो मायावादी तर्क है. अभी इसको इसके अगेंस्ट में क्या बताना, ये हमें सीखना है. हम अभी आपका एक ही श्लोक हुआ है, लेकिन आगे जाके जब मायावाद के विषम प्रपात और दो चार चीज बताएंगे तो हम आपका डिबेट रखेंगे. एक होंगे मायावादी और एक होंगे अध्यात्मवादी या इसको होंगे भक्त. और फिर हम देखेंगे कि आप कितनी स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट एज ए मायावादी देते हो, एज ए मायावादी, और कितना स्ट्रांग आंसर एज ए डिवोटी आप देते हो, ये हमें हम चेक करेंगे. हालांकि वो उसमें कोई फाइट नहीं करनी है, वो तो जस्ट नॉर्मल डिबेट है. सो फिर 30 नंबर के श्लोक में हमने अंत में वो पढ़ा था, दैट वाज द लास्ट श्लोक वी डिस्कस्ड, राइट. उसमें हमने पढ़ा था कि शरीर को अलग अलग बदलाव परिवर्तन आते हैं. यहाँ पर भगवान ने बताया था देहिनो अस्मिन यथा देहे, देहे शरीर को कितने बदलाव होते हैं, कौमारम यौवनम जरा और देहांतर, राइट. यहाँ पर भगवान ने चार बताए हैं, प्रभुपाद ने छह बताए हैं. आप तात्पर्य पढ़ोगे तो तात्पर्य में छह चीजें कोई बता सकता है? तात्पर्य छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है. हाय कृष्ण, वेलकम. यस मेंशन है क्या है इसमें? इसमें मेंशन है, तात्पर्य में नहीं है? ओके नो प्रॉब्लम. ओके सो आप बताओ ऐसे ही सिक्स कौन से हैं? व्हाट आर द सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इन द बॉडी? आई गेस
बचपन से जीवन परिवर्तन.
ठीक है और बताओ. हाँ गिनो गिनो कौन कौन गिने आप गिनो. हाँ यस कहो आप बोलिए वो गिन रहे.
जन्म लेता है,
हाँ
बढ़ता है, अच्छे रहता है, बच्चों को क्षीण होता है और
हो गया छे. ओके तो ये शरीर जो है उसमें छह परिवर्तन होते हैं और ये छह परिवर्तन यहाँ पर भगवान ने चार बताए. क्या क्या है? एक तो कौमारम, यौवनम, जरा और देहांतर. ये चार परिवर्तन बताए गए हैं तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र नमो ये. इससे हमने उस समय आपसे चर्चा किया था कि कोई व्यक्ति बाल्यावस्था का शोक नहीं करता, राइट? अगर जब कोई युवा अवस्था प्राप्त करता है तो बाल्यावस्था का कोई अपना फोटो रख के कोई शोक सभा करता है, हाय हाय मैं मर गया था, जब ये छोटा बच्चा रहा नहीं. अब कोई दुखी होता है, हालांकि हम तो खुश होते हैं, हम तो कहते हैं कि ओ यू आर ग्रोन अप नाउ, अब बड़े हो गए, यू बिकम हैप्पी. तो इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर वृद्ध होता है या अगर उसका शरीर देहांतर होता है तो उसके लिए कोई शोक नहीं करता. अभी प्रश्न ये था कि शोक किसी व्यक्ति का मृत्यु से होता है लेकिन और एक रीजन है शोक का कि आप अभी आप उसका शरीर आपके पास रहेगा नहीं, आप उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते, आप उनसे कोई व्यवहार नहीं कर सकते, इसलिए शोक होता है. लेकिन हमारे आचार्यों ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको भी तोड़ दिया. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा इसके विषय में कि बूढ़ा व्यक्ति ऐसे भी दुखी होता है तो उसको नया शरीर प्राप्त होगा तो आप उस चीज के लिए दुखी हो रहे हो, उनके सुख का आपको दुख हो रहा है. राधा यही बात हुई ना. अगर वो व्यक्ति जब नया शरीर लेगा तो उसको अच्छा फ्रेश शरीर मिलेगा, अच्छा हेल्दी शरीर मिलेगा. इस शरीर में जब बूढ़ा व्यक्ति जैसे मान लो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर आज गुजर गए, इजंट इट, वाजपेयी जी आज गुजर गए, दोपहर का शाम को पता नहीं कब गुजर गए लेकिन मैं न्यूज में देखा कि वो गुजर गए. तो अभी उनकी उम्र थी कितनी करीब 93 इयर्स है ना. तो 93 इयर्स वाला बूढ़ा आदमी उनका एक किडनी तो 84 से फेल थी, एक ही किडनी पे लाइफ चल रही थी उनकी. अभी 93 इयर्स ओल्ड मैन उनके जीवन में कितनी समस्याएं होगी आप सोचो. आई डिडंट गो, मैंने हेडलाइन पढ़ा था, मैंने ज्यादा देखा नहीं उसको. उसमें ऐसा मैंने पढ़ा था कि यह अनलिमिटेड डिसीज, उनके शरीर में हजारों रोग थे. अभी ऐसा रोगी व्यक्ति जी के क्या करेगा? इट इज एक्चुअली बेटर दैट ही डाइज. अच्छा वो उनको मृत्यु आती है तो दूसरा शरीर मिलेगा, तो ताजा शरीर मिलेगा, तो यू कैन हैव सम रिलीफ, सब पेन एंजाइटीज एंड ओल्ड एज इज एक्चुअली वेरी स्ट्रेसफुल, बहुत ज्यादा. आई डोंट नो, आई मीन कुछ लोग को अनुभव होता है ओल्ड एज जो होता है इट इज वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड ऑफ द लाइफ, नोबडी लाइक्स टू स्टे देयर. उसमें सब जगह से कष्ट होता है, इरिटेशन फील होता है, यू कैन नॉट डू सर्टन थिंग्स, आपको करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाते हो. सो देयर इज एंड इवन व्हेन यू आर इन कंट्री लाइक यूएस, आप जब अमेरिका में होते हो यू नो आपकी वैल्यू बिल्कुल चली जाती है. दे डोंट वैल्यू ओल्ड पीपल इन अमेरिका में. अमेरिका की सड़कों पे आपको बूढ़े लोग नहीं मिलते ज्यादा. यू वॉन्ट सी पीपल मूविंग ऑन द स्ट्रीट, बूढ़े लोग नहीं मिलेंगे आपको ज्यादा. because they don't like people. They generally go to their old age homes. So dehi no asmin yatha dehe de kaumaram yavanam jaya tatha dehantar prapti dhir astatra namo yati. Dhir vyakti usse vichalit nahi hota. विशेष करके जब भगवान के भक्त होते हैं वो इस चीज को जानते हैं। जब आप भक्ति शास्त्री पढ़ोगे, भगवद गीता के दूसरे चैप्टर को पढ़ोगे, शरीर और आत्मा का अंतर आप सुने, समझे, सीखे, तो हालांकि ये चीज तो हमने सुनी हुई है, लेकिन आपने देखा होगा प्रभुपाद जी जब भी प्रवचन देते थे तो प्रभुपाद इस चीज को बहुत एम्फोसाइज करते थे, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी। अगेन आई मीन समटाइम यू मे फील Oh, how many times I have to listen to this? कितनी बार मुझे सुनेंगे? प्रभुपाद एक ही बात बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, बट बिकॉज द रिपीटेशन इज एम्फसाइज। जब आपको बार बार एक चीज बताई जाती है, इसका अर्थ होता है कि वो चीज के आगे आप पहुंच नहीं पा रहे हो, वहीं पर अटक गए हो। वी आर स्टिल हैविंग द सेम बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड दैट रिमेन्स अंटिल वी गेट यू नो कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम थियोरिटिकल नॉलेज प्राप्त करते हैं, शास्त्री की डिग्री भी प्राप्त कर लेते हैं, शास्त्री बन जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक हम उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, जब उसको व्यवहार में नहीं लाते, तब तक हमारा ज्ञान 50% ही हुआ, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुआ, व्यवहारिक ज्ञान नहीं हुआ। अरे आप कहेंगे प्रभु वो कैसे हो सकता है? वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता वो। आत्मा के स्तर पर काम करना वो एक दिन का काम नहीं है, इट टेक्स टाइम। इसलिए भक्ति की विधि में जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं या हरि नाम दीक्षा लेते हैं, ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, फिर भी ये संभव है कि हम पूर्ण रूप से शरीर की भावना से मुक्त नहीं हो पाए, ये संभव है। इसलिए ये नहीं सोचना कि अगर आप जिस दिन आपने दीक्षा ले लिया वो दिन आपका मुक्ति का दिन था, उससे आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया, वो तो शुरुआत है। अभी तो शुरू होगा आपका जीवन, आध्यात्मिक जीवन तब तो शुरुआत होती है। अगर कोई ब्राह्मण दीक्षा लेता है तो ब्राह्मण दीक्षा करते अब आप ब्राह्मण बनना शुरू करोगे, अभी तक आप ब्राह्मण नहीं थे। नाउ यू स्टार्ट बिकमिंग ब्राह्मण। इनिशिएशन शब्द का ये होता है शुरुआत, इनिशिएशन उसका अर्थ होता है शुरुआत। तो इसलिए आज हम 14वें श्लोक से 14 नंबर श्लोक से आगे पढ़ेंगे। सो एनीबडी वुड लाइक टू रीड ट्रांसलेशन 14 नंबर श्लोक।
हे कुंती पुत्र, चित्त का दुखता खनिक उदय तथा फल कहन में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने का समान है। हे भरत महर्षि, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए
भारत। यहाँ पर भगवान ने कहा है सबसे पहले, बहुत आप सोचिए आत्मा का दो ही श्लोक बताया अभी तक भगवान ने बताया। एक तो मैं ना मेरा अस्तित्व पहले भी था बाद में भी रहेगा ये चीज बताई, उसके बाद बताया कि शरीर में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं और बाद में सीधा ये श्लोक आ गया कि सहन करना सीखो। मात्र सुपर सांस तो कौन थे। सुख और दुख जो हमें शरीर प्राप्त होते हैं वो सीजनल होते हैं। जैसे अभी हमारा सो कॉल्ड मानसून चल रहा है, राइट, तथाकथित मानसून अभी चल रहा है। अब ये मानसून जाएगा, इसके पश्चात विंटर आएगा और उसके बाद फिर वापिस समर, फिर आए नेक्स्ट, लेट्स सी कैसा होता है मौसम। तो ये सीजनल है। अभी जब ठंडी होती है, ठंडी के मौसम में हमें गर्म पानी अच्छा लगता है। अब बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो अगर आपको सुबह सुबह नहाने के लिए अगर थोड़ा वार्म वाटर प्राप्त हो जाए तो यू फील गुड, राइट, आपको अच्छा लगता है। हल्का सा गर्म होता है या आई डोंट सम पीपल लाइक मोर, तो ज्यादा गर्म पानी होता है तो अच्छा लगता है, दे फील वेरी नाइस। ये विदेश में जब जहां पर बहुत बर्फ गिरती है तो वहां पर पूरा सिस्टम होता है इस प्रकार का, कि आप दो घंटा तीन घंटा पानी में पड़े रहो, गर्म पानी के अंदर पड़े रहो, यू नो एंड दे फील वेरी गुड. सो गर्म पानी नहाने में और इवन आपको हॉट ड्रिंक भी अच्छा लगता है उस समय. अगर आपको कोई गर्म दूध देता है, गर्म नींबू पानी देता है या एनीथिंग हॉट, यू लाइक इट, आपको अच्छा लगता है ठंडी के मौसम में. लेकिन वही गर्म पानी अगर आपको मई जून की समर में आपको कोई बोले कि जितना चाहे 3 बाल्टी से नहा लो, 6 बाल्टी से नहा लो, बट व्हाट हैपेंस, यू कैन्ट. तो इसका अर्थ क्या है कि ठंडा पानी और गर्म पानी, ठंडी के मौसम में ठंडा पानी अच्छा लगता है, वही ठंडा पानी आपको विंटर में दे दिया जाए नहाने के लिए, यू नो, तो आप नहाना बंद कर दोगे, है ना. तो ठंडा पानी या गर्म पानी, ये दोनों ही सुख का साधन नहीं है. मात्र स्पर्शांश तो कौनते हैं शीतोष्ण सुख दुख में. यही सूर्य जिसकी धूप में आप ठंडी में बैठना अच्छा लगता है आपको, विंटर के मौसम में आप धूप में बैठते तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन यही सूर्य में समर में आप 8-9 बजे के बाद धूप को धूप से बचना शुरू कर देते हो. सो सूर्य या चंद्र या गर्मी या ठंडी, ये सुख दुख का कारण नहीं है, ये इंद्रिया जन्य है, इंद्रियों से प्राप्त होता है. मात्र स्पर्शांश तो कौन थे, इंद्रिय जन्य है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द सेंसेस. फॉर एग्जाम्पल यू माइट लाइक खीर, आपको खीर पसंद है, आई डोंट नो पसंद है आपको, अच्छा हाँ, या खीर में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, जो नमकीन ले तो पिज्जा पसंद है ना, लाइक पिज्जा आप एक खा सकते हो, फिर आपका भाई आपका फेवरेट डिश है दूसरा खा लो, अब आपको बड़ा अच्छा लगता है फेवरेट डिश है, ठीक है दूसरा दे दो, आपने दूसरा खा लिया. फिर अगर कोई मित्र आएगा आपका, अरे कब खाया जो है, मैं तो देखा ही नहीं, मेरे सामने खा लो, आप कहेंगे नहीं नहीं भाई मैंने ऑलरेडी दो खा लिया, अब मैं नहीं खा सकता, नहीं एक एक और, ठीक है एक और दे दो, तो और एक खा लिया, अब तो यहां तक आ गए, अब नहीं हो सकता है. और फिर अगर कोई आपके पास आता है कहता है कि एक पिज्जा और, तो वही चीज जो आपकी सबसे प्यारी फेवरेट डिश है, जैसे समझ लो आपको खीर पसंद है, आप कितना 1 लीटर खीर पी लिया और कोई आके आपको बोलेगा कि आप और थोड़ा सा खीर ले लो, तो आपको लगेगा बस अत्याचार मत करो, दिस इज टॉर्चरिंग, यू नो डोंट डू इट, मत कीजिए ऐसा, राइट. सो द सेम वे यू माइट लाइक पकौड़ास, आपको पकौड़ा अच्छा लगता हो इन केस, यू नो, लेकिन जब आपको पेट की बीमारी होती है तो उस समय आपको उसको देखने से भय लग जाता है, यू नो, पकौड़ा को देखने से डर लग जाता है, नहीं इसको हटाओ मेरा पेट खराब है, isn't it? तो कहने का अर्थ है कि ना पकौड़ा ना खीर ना ये पिज्जा वगैरह कुछ भी हम बता रहे थे, ये सुख का साधन नहीं है. ये एग्जाम्पल हमने लिया, लेकिन आप कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो मटेरियल वर्ल्ड में से, कोई भी एग्जाम्पल, वो केवल आपकी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, और वही साधन सुख का आपको दुख देता है, और वही दुख का साधन आपको सुख देता है. अर्थात सुख और दुख आपकी इंद्रियों से प्रकट होते हैं, ना कि साधनों से. तो मात्र स्पर्शांश तो कौन थे शीतोष्ण सुख दुखदा, ये बदलाव होता रहता है, सर्दी ऋतु वगैरह वगैरह उसमें बदलाव होता रहता है. जैसे कि कोई सीजनल है, माताएं गर्मी के मौसम में रसोई बनाना बंद कर देगी क्या, हाँ उनको आग के साथ रहना पड़ता है और कुकिंग करना पड़ता है, तो क्या वो बंद कर देते हैं, नहीं. विंटर मॉनसून में क्या ये जो पुरुष है या जो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, क्या वो अपना धंधा जॉब सब बंद कर देते हैं, नहीं अभी तो बाहर तो ठंडा है नहीं जा सकते, नहीं टॉलरेट इट, भगवान कहते हैं उसको सहन करो. मात्र आगमा पाइनो नित्यम, जो आता है उसका जाना निश्चित है, और जो जाता है उसका आना निश्चित है और ये क्रम चलता रहेगा। आगम पायनो नित्यम, ये हमेशा चलता रहेगा। इसलिए हे अर्जुन, ये भारत तितिक्षस्व, उसको सहन करना सीखो। हर छोटी बात में ऐसा क्यों वैसा क्यों मत करो, सहन करना सीखो। बॉडी है तो पेन होगा, मटेरियल वर्ल्ड है तो यू मस्ट फेस, समटाइम यू आर हैप्पी यू आर लाफिंग, समटाइम यू आर सैड, दैट्स ओके। क्या फर्क पड़ता है इससे, हमारा एक पुस्तक है जिसमें आप आई मीन यू जस्ट सी द एग्जांपल्स कि वैष्णवों को ठंडी गर्मी इत्यादि सब सीजनों को सहन करना सीखना चाहिए क्योंकि इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम ठंडी गर्मी कोई बात नहीं करते, हम तो सुख दुख की भी बात करते हैं। ठंडी गर्मी का बात करो तो हमारे मैराथन में रशिया में -20, -25, -30 इतनी ठंडी होती है और इसमें आपकी अमेरिकन गाड़ी भी बंद हो जाती है। तो वहां पर ये भक्त लोग डोर टू डोर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते हैं, डोर टू डोर भगवद गीता वितरण करने के लिए जाते हैं। दिसंबर बहुत ठंडा होता है रशिया में। सो दिस इज द वे टू प्रीच, ये है तांतितिक शश्व, इसको सहन कर लेना। और ऐसे उदाहरण भी है, केवल वो भक्त इतनी ठंडी में आया इसलिए लोग बुक खरीद लेते, बोले इतना ठंडी में कोई बाहर भी नहीं जाता और इतनी ठंडी में आप पुस्तक लेके आए हो भगवदगीता लेकर, एंड पीपल बाय इट। सो एंड समटाइम यू फेस सम नेस्टेड डीमंस, राइट, आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति आता है आपका उपहास करते हैं, आपका आपको डांट देते हैं, आपको यू हैव टू फेस यू नो डिफिकल्टीज जिसमें आपको समझ दुख का सामना करना पड़ता, लेकिन क्या आप बंद कर दोगे उसे, नो, वी हैव टू बी डिटैच फ्रॉम दैट, इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे नित्यानंद और हरिदास, ये लोग गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, आई मीन डोर टू डोर गए थे हरिनाम वितरण करने के लिए नित्यानंद और हरिदास, तो उनको दो महात्मा मिले थे, है ना, कौन थे, जगाई और मदाई। और ये जगाई मदाई जैसे लोग शायद हमें तो नहीं मिलते, या हमें मिलते हैं लेकिन वो पत्थर से हमला नहीं करते हम पर, हाँ और शब्द से हमला करते, वो आपको सिर पे चोट नहीं पहुंचाते। लेकिन मदाई ने तो नित्यानंद प्रभु को ठोक दिया था। तो इसका परिणाम क्या है कि यू फेस ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन इन एग्जीक्यूशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसको हमें सहन करना चाहिए, इससे विचलित नहीं होना चाहिए, ये बात है, इससे विचलित नहीं होना चाहिए। कृष्ण भक्ति का अर्थ ये नहीं होता है कि जिस दिन से मैंने दीक्षा लिया उस दिन के बाद अब सारे दुख नष्ट हो जाने चाहिए, सुखम कर तुम अभी, भक्ति तो सुख पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रभु जी आप तो बता रहे थे कि भक्ति का आचरण करेंगे तो सब सुखी हो जाते हैं, तो हमारा दुख क्यों आ रहा है, और भक्ति में जुड़ने के बाद तो अधिक दुख आने लगता है, ऐसा होता है उसमें तो और पहले ज्यादा अच्छा था, और कई बार तो आप यू नो मेंटली डिस्टर्ब रहते हो भक्ति के बाद जुड़ने। कुछ लोग का ऐसा मानना होता है कि जब मैं दीक्षा लूंगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ओपन दे दो संबरी मछली। सो भक्ति के मार्ग में जुड़ने से आप दुख से मुक्त नहीं होते, फर्क केवल इतना होता है कि आपको ज्ञान प्राप्त होता है। कम फॉरवर्ड थोड़ा आगे आगे, ओके इवन कम, ये हैज स्पेस, ओह या चेयर इज नॉट रिक्वायर्ड, यस। So never think we welcome Prem Vilas Prabhu, Revati Nath Prabhu and Mataji. So they are joining us in Bhakti Sastri from today. So हम आपको बता रहे थे कि भक्त जो होते हैं वो दीक्षा ग्रहण करे या नहीं करे, वो ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण करे या नहीं करे, वो संन्यास ले या नहीं ले, सुख और दुख तब तक आएगा जब तक आपका भौतिक शरीर है। इसलिए ये उम्मीद मत करना कि आप कृष्ण भक्ति में जुड़ोगे तो दुख चला जाएगा। क्या होगा परिणाम कृष्ण भक्ति में, कि आपका सर्प जो सांप है, अगर दूर से आप देखते हो अगर कोई सांप सर्प दंश देता है तो आपको भय होता है ना, आपको लगता है अरे बाबा इस व्यक्ति को तो सांप काट रहा है, देखो सर्प दंश कर रहा है। लेकिन उस व्यक्ति को पता है कि सर्प में जो दांत है निकाल लिए गए, अब वो कितना भी काटे कुछ भी करे उससे क्या होता है, उस व्यक्ति को कोई कष्ट होता है? सांप के दांत निकाल लो फिर वो कितना भी काटे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन देखने वाले को ऐसा लगेगा कि इसको कोई सांप काट रहा है। इसी तरह से अगर आप दूर से देखोगे भक्त को तो आपको लगेगा कि देखो कितना कष्ट अनुभव कर रहे हैं, कितना दुखी है ये, कितना भगवान का सेवा करते, मुझे तो हजार बार लोग बोलते हैं ऐसे, नॉन डिवोटीज ज्यादा बोलते हैं, आप बोले इतना अच्छा सेवा करना चाहते हो, आप प्रचार करते हो सेवा करते हो ये करते हो, फिर भी भगवान आपका कोई सहायता नहीं करते। ये नॉन ड्यूरी जनरल इस तरह से सोचते हैं कि भगवान आपको कोई हेल्प नहीं करते। लेकिन मैंने कहा कि भगवान को छोड़कर और कोई हेल्प नहीं करता, केवल एक ही व्यक्ति जो हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि कष्ट नहीं होगा। आप देखिए कल ही माता जी मुझे बोल रहे थे, माई मदर कि वो इतना प्रचार कर रहे हैं जयप्रता का महाराज, इतना सेवा कर रहे हैं, और आई मीन यू कैन नॉट इवन, आप शब्द में बता भी नहीं सकते, और फिर भी उनको इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैंने उनको कहा यही तो हमें सिखाना चाहते हैं, ये नहीं सोचो कि आपको कठिनाई नहीं आएगी, ये सोचो कि आप किसी व्यवस्था में कृष्ण भक्ति का त्याग नहीं करो, आप चाहे बीमार हो तभी भी। इसलिए मैं हमेशा भक्तों को कहता हूं अगर आपको कभी ऐसा सिचुएशन हो कि आपको कोई बीमारी हो, अस्पताल में जाना पड़े, या बहुत ज्यादा आपका वीक हो जाए शरीर या कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि 16 माला का जप कभी नहीं छूटे, चाहे आप ICU में हो या आप कहीं पर भी हो, माला का जप करने का ये आपका सबसे पहला प्रायोरिटी है, ये आपको छोड़ना नहीं कभी भी, कैसा भी हो जाए कुछ भी हो जाए, पूरा पहाड़ टूट पड़े लेकिन कुछ आपको बिल्कुल इससे विचलित नहीं होना, ये इस श्लोक में विशेष रूप से बताया गया। द मटेरियल सिचुएशन शुड नॉट बी द ऑब्स्टेकल इन एग्जीक्यूशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, मस्ट रिमेन स्टडी इन योर स्पिरिचुअल एक्टिविटी। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर ऑन टेक्स्ट नंबर 15, I was thinking to have a small exercise. Is it okay? Would you like to do that? Yeah.
यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन का दो नामों से संबोधन दिखाते हैं भारत
का। Yes.
तो हमारे आचार्य ने कुछ टिप्पणी की है वहाँ two names in the श्लोक और कुछ।
Not specifically in this shloka because अगर आचार्यों का कोई मेंशन होता है तो देन प्रभुपाद आल्सो एंड सम अदर आचार्यस टू मेंशन, बट इस श्लोक में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कौंतेय और भारत को लेकर के, बट एवरीवेयर देयर मस्ट बी, जब भी होगा हम आपको मेंशन किया करेंगे कि यहाँ पर कौन सा रिलेशन, जैसे अभी आगे वाले श्लोक में आता है दैट वी विल डिस्कस, राइट? सो इसको इसके विषय में आगे कोई प्रश्न है? वी वॉन्ट टू हैव स्मॉल एक्सरसाइज। ओके, सो They are 4 and 4, 8 and 10 and 15. We should have 3 groups or 4 groups. How we divide? Five groups are okay, right? Five groups are okay. तो आपका तीन तीन भक्तों का एक ग्रुप बनेगा फिर, ठीक है? आपका तीन और तीन छह और चार दस, तो एक ग्रुप में चार लोग ले लो, बाकी तीन तीन. You can have small group. तो अभी हम ऐसा करते हैं कि ओके, सो आप हर्ष प्रभु, किरण प्रभु एंड प्रेमविलास प्रभु, यू विल बी इन वन ग्रुप. तो आप थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट उस तरह से कर लीजिए टेम्पररी. फिर तो आप अमित दिव्य हरि प्रभु और रमाकांत प्रभु, आप नहीं, आप नहीं, आप पीछे चले जाइए. ये प्रभु जी दिग्विजय दिव्य, आप आगे आ जाए. तो आप तीन का ग्रुप और बाकी तीन भक्तों का एक ग्रुप. रेवतीनाथ प्रभु, फिर परम ब्रह्म प्रभु और हु एल्स, तीन होना चाहिए ना. हाँ ये प्रभु जी, नहीं ये प्रभु जी अमित जी, हाँ परम ब्रह्म प्रभु रेवतीनाथ प्रभु और अमित जी, आप तीन का एक ग्रुप. आई एम सॉरी मैंने आपको थोड़ा रिशफल किया, लेकिन मैं ग्रुप को बैलेंस करना चाहता था इसलिए. नहीं, आप इनके साथ है, दिव्य हरि प्रभु, रमाकांत प्रभु एंड हु एल्स, या परब्रह्म प्रभु. यस, तो दिव्य हरि प्रभु यू माइट, आप उस साइड है राइट, आप उनके ग्रुप में है. हाँ ठीक है, आप डोंट, आपको तीन प्रश्न दिए जाएंगे हर एक ग्रुप को, जो थ्री क्वेश्चन, उसको आप कोई भी एक लिख लो, आपके ग्रुप में से कोई भी एक लिख लेगा. दैट्स इट. माताओं में वी कीप टू ग्रुप्स, ठीक है, एक तीन भक्तों का एक दो भक्तों का. ओके, तो ऐसा कीजिए कि आप माता जी, आई एम सॉरी फॉर आई डोंट, प्रीति माता जी और आप, और बाकी आप तीन, ठीक है, दैट वी विल डू, सो दैट मे बी लिटिल बैलेंस. या यस, तो आप थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से कर देना कि आपस में डिस्कस कर सको. तो आपका प्रश्न ये है, इसी श्लोक को लेकर के, मत स्पर्शांश तो कौन थे, इसी श्लोक को लेकर के तीन चीजें. एक तो आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, इसमें भी संकीर्तन स्टोरी, इसमें भी एनी एक्सपीरियंस इन एनी इंडिविजुअल लाइफ, जिसमें आपको कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ी एंड बिकॉज ऑफ योर कृष्ण भक्ति आप उसको फेस कर पाए, डिफिकल्ट सिचुएशन, तो ये आप फेस कर पाए, एक चीज. दूसरा क्वेश्चन, टॉलरेटिंग वाइल वर्किंग विद द डिवोटीज, आई मीन वाइल वर्किंग विद द डिफिकल्ट डिवोटीज. तो दूसरा क्वेश्चन है कि डिफिकल्ट डिवोटी के साथ व्यवहार करने में आपको सहनशील रहना पड़े, यू नो टॉलरेंस. डिफिकल्ट डिवोटी जिनका नाम हम नहीं लेने वाले इधर. आई टेल यू डिफिकल्ट ड्यूरीज के विषय में हम क्या कहना चाहते हैं। डिफिकल्ट ड्यूरीज का अर्थ ये करना चाहते हैं यहाँ पर कि उनका आचरण सिद्धांत के रूप अनुकूल नहीं होता, या फिर जो आपके अगेंस्ट में व्यवहार होता है, या यू फील डिफिकल्टी इन डीलिंग विद हिम, यू नो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है उनसे व्यवहार करने का। तो ये संभव है, इतना हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी है तो ये हो सकता है। एक घर में दो भाई आपस में झगड़ते हैं तो इतने बड़े मंदिर में सोसाइटी में दो भाई झगड़ेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो दैट्स फाइन, वेरी मच ओके। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, इज दैट क्लियर? डिफिकल्ट ड्यूटी का अर्थ यही है। हाँ, या योर एक्सपीरियंस वाइल टॉलरेटिंग द सिचुएशन विद द डिफिकल्ट ड्यूटी, या समथिंग लाइक। बट आई वुड मेंशन, आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी ड्यूटी का नाम मत लेना, एक्स वाई जेड ड्यूटी का, बिकॉज वी जस्ट वी वॉन्ट टू रिफ्रेन अवर सेल्व फ्रॉम दैट। एंड थर्ड, वॉट आर द वेज वी कैन डेवलप द क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस? हम ये तितिक्षव अर्थात सहनशीलता का जो क्वालिटी है उसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं? दीज आर द थ्री थिंग्स यू आर सपोज टू डिस्कस, एंड आपका कोई एक ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव आई वुड सजेस्ट। ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव है वो इसको एक्सप्लेन कर सकता है। अगर आप चाहो तो तीनों को अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्लेन कर सकते हैं, तीनों चीज को, इट्स ऑल अप टू यू, बट पार्टिसिपेशन इज वेलकम, इज रिकमेंडेड। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट डिस्कशन, आप लोग आपस में डिस्कस करना शुरू कीजिए।
तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, वाइल हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन योर एक्सपीरियंस फेयर फेस सम डिफिकल्टीज इन लाइफ, हमें आपको पता है कि हम सबके लाइफ में उसका वो सिचुएशन कैसे कैसे होती है, भी हम उसमें समझ पाशन नहीं हो सकता, क्या हम डाइवर्ट हो सकते हैं।
जब हम डिशन कर रहे हैं इस बार हम लोग ऐसे बोला कि आप
जो सबसे बुरा गलत नहीं है,
بالکل کبھی کسی کا بھی کرتا نہیں ہوگا کبھی کا بھی کرتا نہیں ہوتا پھر آپ کو چاہیے آپ کو لگتا ہے یہ بھی ملا ہے
چلا گیا تو چلا گیا اندر ساڑھے چار بجے میں اس کو مجھے منگلہ کر کیا کر ترنت ہی ماں باپ سے پتا کر خالی ہوئے بات میں خالی ہوئے مجھے تھوڑا کر تو گیا تو بات کھلا گیا تھوڑا چلا گیا وہ پانچ بجے تک کھلا کیا ساڑھے تین بجے کا گیا تھا وہاں تک ساڑھے چار بجے پانچ بجے پھر بولا میرا میرا تو نیچر ہی ایسا ہے مجھے آدھے گھنٹے تک ٹوائلٹ نہیں کرتا آدھے گھنٹے میں بس میں نے ایسا لگا کہ اگر آپ کو اتنا گھنٹہ لگتا ہے آپ ڈھائی بجے اور ہمیں ساڑھے تین بجے ہمیں باقی اگر اگر کوئی ویکتی آڈر نہیں کرتا کرتا ہے ان سے ہماری سنسکرت کچھ ایسا کچھ ہمیں ایسے نہیں کوئی اپمان کرے وہاں کرے اپمان کرے
جو ہوگا اچھا اس میں سے بات جو ہوگا اچھا
سر نہیں
जब तक आप अपने आपको सरे मेरे साथ
लास्ट वन मिनट वन मिनट डन फिनिश
डिफिकल्टी होती तुम्हाला नेचर
संकीर्तन में हमें ये सब विधियों का जैसे एक बार कुरुक्षेत्र में श्री प्रभुपाद कुंभ मेला में एक बार गए थे तो ऐसा हुआ कि एक दिन सुबह सुबह प्रभुपाद उठे एक दिन देखा तो एक शिष्य को बुलाया तो बोले ये एक छोटा सा कैंप बनाया था छोटा सा पंडाल जिसमें भगवान की पूजा होती थी। प्रभुपाद ने कहा कि आज आरती क्यों नहीं हुई सुबह 4:30 बजे। तो उनके शिष्य ने कहा कोई उठाई नहीं है, माघ मास होता है बहुत ठंडा होता है, तो कहा कि कोई उठाई नहीं है प्रभुपाद आज तो प्रभुपाद से रियली। देन दूसरे दिन प्रभुपाद 3:30 बजे बिना कपड़े एक केवल जो लंगोट पहन करके नीचे और खुले शरीर में माघ मास की ठंडी में नदी में स्नान करने गए अंधेरे में, और शिष्य को एक शिष्य ने जाकर केवल बोल दिया भक्तों को कि प्रभुपाद स्नान करने जा रहे हैं अकेले, सबके पंडर खाली सबके सब ऑन द स्पॉट उधर आ गए प्रभुपाद। और फिर प्रभुपाद सबके सामने प्रभुपाद ने सबसे फ्रीजिंग कोल्ड यू नो किलिंग वाटर था वो मार डाले आदमी को, ऐसा ठंडा पानी से प्रभुपाद ने स्नान किया। देन प्रभुपाद ने कहा कि आई एम वेरी एजेड पर्सन, मैं बहुत बूढ़ा व्यक्ति हूं, आई कैन डू दिस, बस इतना ही, आगे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी उनको। एंड एवरी वन फॉलोड इट एंड द नेक्स्ट डे से 4:30 बजे मंगला आरती में फुल अटेंडेंस था रोज। दैट्स द आइडिया, ऐसे प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कि एक मीटिंग बुलाया जाए और फिर सबको डांटा जाए कि आप लोग अब क्या समझते हो और चलो हम अध्याय 2 का श्लोक नंबर 14 डिस्कस करते हैं। प्रभुपाद नेवर डिड एनीथिंग, और ये सब नहीं बोला, ये सब प्रभुपाद शोड बाय एग्जांपल, ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप किसी को सिखाना चाहते हो अपना उदाहरण से दिखाओ, ये सबसे अच्छा तरीका है सिखाने का। यस, जो अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण सब लोग फॉलो करते हैं। एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, आपके जो कार्य है उसको लोग ज्यादा देखते हैं, आपके शब्द को इतना ध्यान नहीं देते। तो टेक्स्ट नंबर 15 से भी फर्दर कंटिन्यू जितना हो सकेगा 10 बजे तक। सो लेट्स स्टार्ट टेक्स्ट नंबर 15, पढ़िए, somebody can read।
हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है।
हाँ, सो भगवान इसको मुक्ति की बात बता रहे हैं कि देखो जो पुरुष और शबा, पुरुष और शबा का अर्थ होता है बेस्ट अमोंग मैन, पुरुषों में उत्तम, पुरुष ऋषभ, ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, पुरुष ऋषभ इसका अर्थ है पुरुष और शबा। तो अर्जुन कृष्ण का व्यक्तिगत मित्र था, सो डू यू थिंक दैट इज देयर एनीबॉडी बेटर देन हिम एज मैन? नो, क्योंकि अगर आपको पता है तो नर नारायण भगवान का अवतार था, जिसमें नारायण तो कृष्ण है ही, लेकिन जो नर थे वो अर्जुन का अवतार है, आई मीन अर्जुन इज नर का अवतार अर्जुन। सो इन अदर वर्ड्स द बेस्ट अमंग मैन, जो सबसे अच्छा भक्त माना जाए वो अर्जुन था, पर्सनल यू नो वेरी पर्सनल फ्रेंड ऑफ कृष्णा. तो जो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है पुरुष सभा, जो सबसे अच्छा मनुष्य होना चाहिए, वो मुक्ति का सपोज टू बी डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज एंड गेटिंग बिकमिंग इमॉर्टल, मीन्स वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहिए. सो कृष्ण ने ये फॉर्मूला हमें सिखाया है कि जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस जो है, सुख और दुख, इससे ज्ञानी व्यक्ति प्रभावित नहीं होते. और एक जगह आगे आएगा भक्तों के विषय में कि जब सुख भक्त को प्राप्त होता है तो सोचता है कि मुझे तो बहुत कम सुख मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान ने कृपा करके अधिक सुख दे दिया. और जब उनको दुख प्राप्त होता है तो वो सोचता है कि बहुत दुख मिलने वाला था, भगवान ने बहुत डिस्काउंट करके दे दिया. तो कोई सोचेगा ये तो मूर्ख है, पागल है, कुछ भी होता है तो क्रेडिट भगवान को देता रहता है, और ये कुछ भी होता है कृष्ण ने किया, कुछ भी होता है कृष्ण ने किया. बट एक्चुअली दे आर राइट. वास्तविकता यही है कि हमें इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमारे पूर्व कर्म के आधार से, लेकिन भगवान उसको छोटा करके देते हैं. छोटा सा आप एक भक्त का अभी रिसेंटली भक्त का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं उनको मिलने गया था. तो मैंने कहा कि वो उनका हाथ टूट गया है, तो मैंने उनको कहा चलो आपका हाथ से ही काम हो गया. नहीं तो वो तो पूरा पैड आती है, हेलमेट आती है, बहुत सुख हो जाता है ना, तो हाथ में ही आपका लगा है, ज्यादा नहीं है. लेकिन हमारे पूर्व कर्म के अनुसार अनेक दुख भुगतना पड़ता है, लेकिन भगवान कृपा करके उसको छोटा करके दे देते हैं. सो डिवोटीज इज नॉट फिट टू गेट लिबरेशन हु हेजिटेट, जो जन्म जो सुख और दुख से विचलित हो जाता है वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं है. वन शुड नॉट स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इन एनी सिचुएशन. सुखे दुखे भूलो नाको सदा हरि बोले दा, संपदे विपदे जीवने मरने दाय मम गलत हुआ ओ पद वरने. संपदे विपदे, सुख हो या दुख हो, आपको कृष्ण की शरण में रहना चाहिए. एक्चुअली इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा सा कृष्ण भक्ति को गंभीरता से लोगे, इसमें मेक एनी डिफरेंस, कुछ फर्क नहीं पड़ता. सुख आता है और दुख आता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. वो आता है, वो आ जाता है. वो आपको प्रहलाद महाराज कहते हैं, आपको पूछ के तो आता नहीं है ना, सुख या दुख, तो क्यों चिंता करते हो इतना. और जब जाएगा तभी आपको पूछ के थोड़ी जाएगा, अपने आप ही जाएगा. तो जो अपने आप आता है और अपने आप जाता है उसके लिए क्यों चिंतित हो, वो उसका काम करे, हम अपना काम करें. सो नाउ फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं नासुते विद्यते भाव, पढ़िए.
तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि भौतिक शरीर का तो कोई स्थिर स्थायित्व तो नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है. उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है.
हाँ, उन्होंने दोनों का स्टडी किया. कौन लोगों ने? तत्वदर्शियों ने. तो यहाँ पर तत्वदर्शी और चौथे अध्याय में भी तत्वदर्शी आता है ना, वो तत्वदर्शी अर्थात अध्यात्मवादी या गुरु है ना. तो तत्वदर्शी उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो सत है उसका कभी नाश नहीं होता, और जो असत है वो हमेशा नहीं रहता. तो दो चीज बताई गई, एक है सत और एक है असत. सत का अर्थ होता है शाश्वत, सत का अर्थ होता है आध्यात्मिक, उसको सत बोलते हैं. जैसे सत्संग, साधु का संग, सत्संग. और दूसरा होता है असत्संग, तो असत संघ का अर्थ होता है कि आप सारी असत चीज इकट्ठा करते हो। सत वो वस्तु है कि जो हमेशा रहती है, सद्बुद्धि बोलते सद्बुद्धि। सद्बुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि का अर्थ होता है कि आत्मा के लिए बुद्धि, बाकी सारी दुर्बुद्धि उसी को सद्बुद्धि बोलते हैं। तो सत का अर्थ होता है आत्मा, जो शाश्वत है वो सत। सत का कभी नाश नहीं होता, ओम तत् सत हम बोलते ना, ओम तत् सत। तो दो चीजें, द सीयर ऑफ द ट्रूथ रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सोल। ही टेल्स अर्जुन दैट, कृष्ण टेल्स अर्जुन कि दो प्रकार के है नाम। प्रभुपाद इसके विषय में एक जगह पर बताया लेक्चर में कि देयर आर टू थिंग्स जस्ट लाइक स्काई एंड द क्लाउड। द स्काई इज सत एंड क्लाउड्स आर असत। आसमान जो है क्या बोलते स्काई, वो हमेशा रहता है, उसका अस्तित्व हमेशा है, और क्लाउड जो है वो नष्ट हो जाता है। तो प्रभुपाद हैज गिवन दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लाउड्स एंड द स्काई। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एंड आई जस्ट रीड एंड द यर्न इज समटाइम वी हैव एन एक्सपीरियंस व्हेन थ्रेड बिकम एंटेंगल एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट unreveal them, and the yarn is sometimes spoiled. So on account of her attachment to this material body, we are becoming entangled. So-called philosophers, scientists, scholars, they say, I think. What is your value? Great personality never say like this. Krishna even say, tatva darshivi. Prabhupada kehte hai ki, jab Krishna khud keh raha hai ki tatva darshivi ne ye niskarsh nikala hai. I think में काम नहीं चलता है, वो वहां से सत्य की बात नहीं होती। कृष्ण हिमसेल्फ से सी द तत्वदर्शी, दे हैव रिसर्च एंड देन दे केम विद अ कंक्लूजन। दिस हैव बीन कंक्लूडेड बाय हायर अथॉरिटीज। इवन द कृष्ण इज हिमसेल्फ इज एन अथॉरिटी, स्वयं भगवान अपने आप एक अथॉरिटी है। बट समटाइम ही सेज माई ओपिनियन and sometimes he says opinion of tattva-darshivis. So this is the way to give the conclusion. So आगे वाले श्लोक में सत के विषय में बात हुई है, और 18 नंबर में असत के विषय में बात हुई है। 17 नंबर पढ़िए, सत के विषय में है।
जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है।
हाँ, यहाँ इसको नष्ट नहीं किया कर सकते। आप चाहे अर्जुन तुम कितना भी मान छोड़ दो, कितना भी आप कुछ कर दो, ये तुम्हारे भीष्म द्रोण के आत्मा को नाश नहीं हो पाएगा। बिकॉज वो ना भावो विद्यते सता, ना भावो विद्यते सता। और जैसे मैंने बताया, इसके आगे फिर भगवान इस विषय में ज्यादा बात नहीं करते, बस यहाँ भगवद गीता के दूसरे अध्याय में ही ये बात हुई है आत्मा शरीर के आधार। आफ्टर दिस यू वोंट फाइंड एनी सेट डिस्कशन इन होल भगवद गीता। एंड द नेक्स्ट वर्स 18 नंबर का जो श्लोक है उसमें आता है नासतो विद्यते भाव। पढ़िए,
अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत चीज के भौतिक शरीर का अंत अवश्यभावी है, अतः
है भरतवंशी युद्ध करो। हाँ, तो बॉडी जो है वो नष्ट होने वाला है, चाहे आप कितना भी प्रयास करके देख लो। आज तक भूतकाल में पास्ट में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इस शरीर का कोई व्यक्ति का शरीर नष्ट नहीं हुआ, और भविष्य में ऐसा होगा नहीं। तो शरीर नश्वरी है, और भौतिक शरीर कई स्वभाव, चाहे वो कई वैष्णव का भी होगा, वो भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि पंच महाभूत से बना हुआ शरीर होता है, वो नष्ट होना स्वाभाविक है, वो असत है, वो लंबा समय नहीं रहेगा। आज मैं आपके सामने, कल ये शरीर ना भी हो, पंच महाभूत कभी भी नष्ट हो जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। प्रॉपर राइट्स, सो फ्रॉम बोथ व्यू पॉइंट देयर इज नो कॉज ऑफ लेमेंटेशन, बिकॉज द लिविंग एंटिटी has living entity as he is cannot be killed, nor can the material body be saved. for any length of time or permanently protected. So because the living entity as he is cannot be killed. क्योंकि आत्मा जो है वो उसका नाश होगा नहीं, वो आज नहीं होगा तो कल भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा. और शरीर जो है वो कभी भी आप उसको बचा नहीं सकते, कभी भी यू कैन नॉट प्रोटेक्ट. फिर इसलिए अर्जुन को सिखा रहे क्या, इतना क्या सोच रहे हो, शरीर जो है वो तो नष्ट होने ही वाला है, तुम नहीं मारोगे तो और कोई मारेगा, तुम क्या सोचते हो तुम नहीं मारोगे अलग अमर बन जाएंगे. नो, ये तो मरने वाले, मरने के लिए तो जन्म लिया है. सो नेक्स्ट श्लोक में फिर भगवान अर्जुन को ये हन्य देव के विषय में बताते हैं. पढ़िए.
इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तो जो इसे मरा हुआ समझता है, जो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न मारता है और न मारा जाता है.
आत्मा नहीं मारता है और न ही
मरता नहीं, न ही मारा जाता
है. हाँ, I just use this English word. Neither he who thinks the living entity is slayer, nor who thinks it slain, is in knowledge. For the self slays not, nor is slain. तो यहाँ पर कहा गया है कि आत्मा की हत्या तो हो ही नहीं सकती, और आत्मा की हत्या कोई कर नहीं सकता. इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप किसी का भी हत्या कर दो और फिर बोलो कि आत्मा की तो हत्या होती नहीं है. एक्चुअली ऐसा हुआ था, ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ था. ऐसा पूछा था किसी जज ने कि तुमने इसकी हत्या क्यों की, बोले आत्मा तो श्लोक बता दिया, बोले आत्मा की तो हत्या होती नहीं है, बोले मैंने मारा इसे, इसका थोड़ी कि इस डाइड, वो तो अमर है, वो तो उसका आत्मा तो नष्ट नहीं होता है. सो इफ आई किल, एक्चुअली आई डिड नॉट किल. So this is foolishness. So Vishwanath Chakravarti Thakur इसके विषय में कहते हैं कि अगर अर्जुन ये सोचता है कि उसके मारने से द्रोण और भीष्म मर जाएंगे तो वो मूर्ख है, क्योंकि वो ना द्रोण या भीष्म को मार नहीं सकता, क्योंकि वो तो आत्मा है, वो तो मार नहीं सकता. और उनके कारण अगर वो नहीं मारेगा तो कोई नहीं मारेगा तो है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं. कौवे को छोड़ करके सारी योनियां खुद न खुद मरती है, केवल कौवे को मारना पड़ता है. यू नो, कौवा अपनी मृत्यु से नहीं मरता, कौवे को मृत्यु नहीं होती, कौवे को मारना पड़ता है तभी वो मरेगा. ऐसा बताएगा चौरासी लाख योनियों में एक ही ऐसी योनी है. और जनरली तब आपको लगा तो फिर ज्यादा कौवे होने चाहिए, ज्यादा कौवे होने चाहिए, कौवे कम हो रहे कौवे. लेकिन आप सोचिए कि हम कितने कितने हमारे प्रकृति के द्वारा हाउ डिफिकल्ट सिचुएशन ये क्रिएटेड दैट कौवे अपने आप ये हमारे कारण मर रहे. They are ready to live and they may live, but we create such poisonous situation, then they die. So actually we are the one who are killing. लोग उनको हत्या करते, ऐसा लिखा हुआ है. कौवा अपने आप नहीं मरता, उसको मारना पड़ता है. इसलिए काग भूसंडी कई कई युगों तक जिंदा है, कई कई युगों से जिंदा है. और ऐसा अगर कोई उसकी हत्या नहीं करेगा तो पूरा कल्प जी रहता है, एक कल्प पूरा हो जाता है, वो मरेगा नहीं. एंड ही नोज एवरीथिंग. ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रोज, वी आर सपोज टू टॉक अबाउट वी आर सपोज टू डाई, हम मरने वाले हैं. सो ये लोग मरे थे भीष्मा और द्रोण वगैरह, वो लोग एक्चुअली मुक्ति को प्राप्त किए थे. उन लोगों ने मरने के बाद उनको मुक्ति प्राप्त हुई थी. सो नाउ द नेक्स्ट श्लोक उसमें पढ़िए, जन्म मृत्यु के विषय में है.
आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा. वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है. शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता।
यस, यहाँ है न जायते न मृियते, तो जन्म भी नहीं लेता और मृत्यु भी नहीं लेता। He has not come into being, does not come into being and will not come into being. He is unborn. Who is unborn? Atma. Unborn, eternal, ever existing and permeable. He is not slain when the body is slain. Atma ke vishay mein Bhagwan ne Arjun ko spasht roop se bata diya ki na usko janma hota hai aur na hi mrityu hota hai. To janma kisko hota hai? Sharir ko hota hai. शरीर होता है, जन्म होता है शरीर को, और मृत्यु भी होता है शरीर को, क्योंकि हमने अभी अभी बात किया था कि शरीर में बदलाव आते हैं, आत्मा के बदलाव की बात नहीं हुई अभी तक। शरीर में बदलाव आते हैं कि कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था और देहांतर, ये शरीर के बदलाव होते हैं, इसलिए आत्मा को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो अर्जुन का जो ये भय था कि वो अपने गुरु को मार देगा या हत्या कर देगा, तो भगवान ने उसका ये जो संशय था वो हटा दिया। आत्मा कभी मरता ही नहीं है, तो द्रोण की हत्या हो ही नहीं सकती। डोंट वरी, कंटिन्यू। सो टेक्स्ट नंबर 21।
आत्मा अविनाशी सनातन अजन्म और अविकारी छे, एवं जानकार मनुष्य कोई ने केवी रीते हणी सके अथवा हणावी सके।
Yes. वो कैसे है किसी को मार सकता है किसी को? तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, although the justice of the peace, anybody would like to read this particular line example, although the justice of the peace, go on. In the purport, although the justice of the peace,
the justice of the peace awards a capital punishment to a person condemned for murder. The justice of the peace cannot be blamed because he orders the violence to another person according to the codes of justice.
Further, similarly,
in Manushamita, the law for mankind, it is supported that a murderer should be condemned to death so that in his next life he will not have to suffer for great sin he has committed. Therefore, the king's punishment of hanging a murderer is actually beneficial. Similarly, when Krishna orders fighting, it must be concluded that violence is for supreme justice, and thus Arjun should follow the instruction, knowing well that such violence committed in the act of fighting for Krishna is not violence at all, because at any rate, the man or rather the soul cannot be killed. So for the administration of justice, so-called violence is permitted.
Yes. So, यहाँ पर उदाहरण प्रॉपर ने दिया है कि अगर कोई जज कहता है, अच्छा तुमने ये किया तुम्हें मृत्युदंड, दूसरा आता है उसने ये किया तुम्हें भी मृत्युदंड, अगर ऐसा हो रहा तो रोज कितने लोग को मारता है जज, एंड उसको सबकी हत्या का पाप लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जज दिन में अगर 10 लोग को भी मृत्युदंड का आदेश देता है, लेकिन घर पे जाके चांसेस होता है, उसको मृत्यु का शोक नहीं है कि मैंने 10 लोग को मृत्यु का दंड दिया। क्यों? बिकॉज दैट इज द जस्टिस, यही न्याय की मांग है। तो इस तरह से जब भगवान ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, दे मस्ट बी किल्ड, इन सब की मृत्यु होनी चाहिए, तो उस मृत्यु का उस आदेश का पालन करना वो कभी भी पाप नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी। तो इसलिए अगर अर्जुन ये समझता है कि उसको पाप लगेगा, तो भूल रहा है कि भगवान ने बोला इसलिए तुम कर रहे हो, कि थोड़ी तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो, भगवान की इच्छा से कर रहे हो। सो कृष्णा वास्तव में हमारे मित्र है, और जब वो सजा देते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि वो आपका हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको नहीं सजा दे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इफ यू हैव कमिटेड अ बिग क्राइम एंड अगर आपको उसका पनिशमेंट नहीं दिया गया, तो उसका इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पनिशमेंट होगा नेक्स्ट बर्थ में। तो इससे अच्छा है कि आपको इसी जन्म में दंड दिया जाए, जो जैसे फांसी, किसी को अगर फांसी दिया जाता है तो उसके किए गए उस कर्म के परिणाम से उसको मुक्ति मिल जाती है, his release of that sinful activity. So actually Krishna is very kind to everyone. इसलिए भगवान सबके परम मित्र। प्रभुपाद एक जगह पर बताए कि in one of the lectures he says in Seattle, प्रभुपाद बताते थे कि कृष्ण इज अवर नेचुरल फ्रेंड। भगवद गीता में भगवान को अपना मित्र बताया गया है, बट देर आर थ्री काइंड ऑफ, संस्कृत में तीन प्रकार के मित्र है और इंग्लिश में एक ही शब्द होता है फ्रेंड, और वी डोंट हैव एनी डिफरेंट। संस्कृत में तीन शब्द है, एक होता है मित्र, एक होता है बंधु, और तीसरा होता है सुहृत। सुहृत 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 भगवान का सुहृदम सुहृत, तो सुहृत है। तो मित्र प्रभुपाद सेज दैट मित्र इज मित्र तो सभी होते हैं लेकिन सब अलग अलग क्वालिटी, जस्ट लाइक योर फ्रेंड्स। सिंसियरली ही वॉन्ट्स यू टू बी हैप्पी, जस्ट लाइक योर मदर, मदर इज ऑल्सो फ्रेंड, डिवोटेड वाइफ इज ऑल्सो अ फ्रेंड, फादर मदर वाइफ एनी सच यू नो रिलेटिव ब्रदर सिस्टर ऑल आर फ्रेंड्स यू नो। बट जैसे प्रभुपाद बताए संस्कृत में रियल फ्रेंड होता है उसको सुहृद बोलते हैं, मित्र सोशल फ्रेंड को मित्र बोलते हैं, सोशल फ्रेंड दैट इज मित्र, ऑफिशियल फ्रेंडशिप उसको बंधु बोलते हैं, और हार्ट टू हार्ट फ्रेंडशिप दैट इज सुहृद, वेल विशर, रियल वेल विशर सुहृद। तो कृष्ण हमारे सुहृद है, हम किसी भी स्थान में जाएंगे, कॉकरोच की योनि में जाएंगे, देन ही विल ज्वाइन अस, तभी भी हमारे पास रहेंगे, वो आपको छोड़ नहीं देंगे, और जाओ जाओ तुम घूम फिर के आ जाओ फिर अपने साथ में जाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, ही रिमेन्स बिटवीन ऑल द कंडीशंस यू आर इन, दैट इज सुहृद। और एक ऐसे पिता की तरह आपके साथ काम करते हैं कि माय डियर बॉय व्हाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग मी, व्हाई आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, आप स्वतंत्र होकर क्यों सब करना चाहते हो, आई एम आस्किंग यू सरेंडर टू मी, आप मुझमें शरणागत हो जाओ, इज आस्किंग लाइक अ फादर बट वी डोंट केयर फॉर हिम। कृष्ण ही सेज नो आई विल गो टू ऑल द बॉडीज, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉग, देन कृष्ण सेज ओके यू बी अ डॉग, आई विल कम विथ यू, फिर वो कहता है नो नाउ आई वॉन्ट टू बिकम अ रैट, ठीक है तुम रैट बनाओ आई विल ज्वाइन, नाउ आई वॉन्ट टू बिकम अ कॉकरोच आई विल कम विथ यू, दैट इज कृष्ण इज हार्ट, वो कभी आपको छोड़ेंगे, ऑलवेज हेल्पिंग व्हाट एवर कंडीशन यू आर, सो ही इज अवर रियल फ्रेंड। सेम वे यू नो समटाइम ही अपीयर्स, समटाइम ही सेंड्स हिज बोना फाइड रिप्रेजेंटेटिव, कई बार खुद प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु आए ऐसे, या फिर अवतार लेते हैं, हालांकि वैकुंठ में रहते फिर भी हमारे उद्धार के लिए आते हैं, कई बार प्रभुपाद जैसे महात्मा को भेजते हैं, कई बार आध्यात्मिक गुरु को भेजते हैं हमारे लिए, एंड देन ही you know, delivers us. So we have to be careful not to give trouble to our genuine real friend, and we should surrender to whatever he says, and that will make you know, the life successful, like what Arjuna did. You know, he accepted whatever Arjuna said. That's the idea. So we stop here, and we complete 21 sloka or 22? 21. 21. Okay, but next time we'll try to complete as many as possible. So we stop here. Alright, so.